This is the University of Cambridge Local Examination Syndicate, International General Certificate of Secondary Education, June 2007 examination in Hindi as a second language. Paper 2, Listening Comprehension. Turn over now.
अभ्यास एक, प्रश्न एक से छः. प्रश्न एक से छः के लिए आप क्रमानुसार कुछ संक्षिप्त संवाद सुनेंगे. उनके आधार पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए. आपके उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए. आपको प्रत्येक संवाद दो बार सुनाया जाएगा.
हेलो जेकब, सुना है तुम अगले हफ्ते जयपुर आ रहे हो.
तुमने बिल्कुल सही सुना है. कहो, लंदन से कुछ मंगवाना है क्या?
नहीं तो, ऐसा क्या है आजकल जो यहाँ नहीं मिलता? मुझे तो बस तुम्हारा मोबाइल नंबर चाहिए था.
अरे अभी लो, नोट करो. 07712707333.
शुक्रिया, बाय.
बाय बाय अनीता. माफ कीजिए, लगता है मैं थोड़ा भटक गया हूँ. मुझे बिरला मंदिर जाना है. क्या आप बता सकती हैं किधर पड़ेगा?
जी, इसी सड़क पर थोड़ा आगे है.
लगभग कितनी दूर होगा?
यही कोई 1 किलोमीटर दाईं तरफ पड़ेगा. कृपया ध्यान दें, लंदन से दुबई होकर दिल्ली आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान संख्या BA131 के आगमन में 25 मिनट की देरी हो रही है. यह उड़ान अब 10:15 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगी.
और अब पेश है मौसम का हाल. अगले 24 घंटों में उत्तरी भारत के अधिकतर शहरों में आसमान साफ रहेगा. हिमाचल में कम दबाव के कारण मसूरी में बादल छाए रहने और शिमला में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. दिल्ली और आगरा में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा.
पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि साबरमती आश्रम में फ्लैश के साथ फोटो लेना और प्रदर्शित सामग्री को छूकर देखना मना है. आश्रम की पुस्तिका 50 रुपये में उपलब्ध है, जिसमें आश्रम के उल्लेखनीय भागों और ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र परिचय के साथ दिए गए हैं.
प्रिया, एक समस्या है. यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए टिकट लेना पड़ेगा और मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं.
कोई बात नहीं, मैं भागकर उस दुकान से चॉकलेट खरीद लाती हूँ. खुले पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ खाने को भी मिल जाएगा. हेलो जेकब, सुना है तुम अगले हफ्ते जयपुर आ रहे हो।
तुमने बिल्कुल सही सुना है। कहो, लंदन से कुछ मंगवाना है क्या?
नहीं तो, ऐसा क्या है आजकल जो यहाँ नहीं मिलता? मुझे तो बस तुम्हारा मोबाइल नंबर चाहिए था।
अरे अभी लो, नोट करो। 0771270 7733।
शुक्रिया, बाय।
बाय बाय अनीता। माफ कीजिए, लगता है मैं थोड़ा भटक गया हूँ। मुझे बिरला मंदिर जाना है, क्या आप बता सकती हैं किधर पड़ेगा?
जी, इसी सड़क पर थोड़ा आगे है।
लगभग कितनी दूर होगा?
यही कोई 1 किलोमीटर दाईं तरफ पड़ेगा। कृपया ध्यान दें, लंदन से दुबई होकर दिल्ली आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान संख्या BA131 के आगमन में 25 मिनट की देरी हो रही है। यह उड़ान अब 10:15 पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगी।
और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों में उत्तरी भारत के अधिकतर शहरों में आसमान साफ रहेगा। हिमाचल में कम दबाव के कारण मसूरी में बादल छाए रहने और शिमला में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। दिल्ली और आगरा में तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा।
पर्यटकों को सूचित किया जाता है कि साबरमती आश्रम में फ्लैश के साथ फोटो लेना और प्रदर्शित सामग्री को छूकर देखना मना है। आश्रम की पुस्तिका ₹50 में उपलब्ध है, जिसमें आश्रम के उल्लेखनीय भागों और ऐतिहासिक हस्तियों के चित्र परिचय के साथ दिए गए हैं।
प्रिया, एक समस्या है। यहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए टिकट लेना पड़ेगा और मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं।
कोई बात नहीं, मैं भागकर उस दुकान से चॉकलेट खरीद लाती हूँ। खुले पैसे भी मिल जाएंगे और कुछ खाने को भी मिल जाएगा। अभ्यास 2, प्रश्न 7 से 11। सानिया मिर्जा भारत की पहली महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2005 में ग्रैंड स्लैम अमरीकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता के 4th दौर तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इस सफलता के बाद KBC के खेल संवाददाता मानक गुप्ता ने सानिया मिर्जा से एक बातचीत की। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और पूछी गई जानकारी को नीचे दिए खाली स्थानों में भरिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
नमस्कार, खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टेनिस प्रेमी आज सानिया मिर्जा के नाम से परिचित हैं। लेकिन कौन है सानिया मिर्जा और उनके इस लोकप्रिय टेनिस कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज सानिया मिर्जा स्वयं हमारे साथ हैं। सानिया जी, खेल और खिलाड़ी में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सानिया जी, क्यों ना आपके बचपन से ही शुरुआत करें, जरा बताइए आपका बचपन कहाँ बीता और आपने टेनिस खेलना कब और कैसे शुरू किया?
मेरा जन्म तो 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था, लेकिन बचपन से ही हम हैदराबाद में रहे, जहाँ मेरे अब्बा जान इमरान मिर्जा जी ने 6 साल की उम्र से ही मुझे टेनिस सिखाना शुरू कर दिया था।
क्या पेशेवर खिलाड़ी के रूप में भी आपने छोटी उम्र से खेलना शुरू कर दिया था?
इतनी छोटी उम्र से तो नहीं, लेकिन 17 साल की उम्र तक मैं पेशे के तौर पर टेनिस खेलने लगी थी।
यानी 2003 से। क्या तब भी आपकी कोचिंग आपके अब्बा जान ही कर रहे थे?
नहीं, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। अम्मी मुझे एक दिन एक कोच के पास ले गई। पता है उन्होंने क्या कहा?
नहीं नहीं, जरा बताइए।
उन्होंने कहा, लड़की तो बहुत छोटी है, और मेरा कोच बनने से इनकार कर दिया।
सच में? उसके बाद क्या हुआ?
उसके लगभग 1 महीने बाद उसी कोच ने मेरे अम्मी अब्बा को फोन किया और कहा कि उसने इतनी छोटी उम्र में किसी खिलाड़ी को इतना अच्छा खेलते नहीं देखा।
और सानिया जी, आपने कोच के हर शब्द को सही साबित करके दिखा दिया। सानिया जी, क्या आपको आशा थी कि आप इतनी तेजी से इतनी ऊंची रैंकिंग पा लेंगी?
बिल्कुल नहीं। मेरा लक्ष्य 2005 के अंत तक विश्व की पहली 100 खिलाड़ियों की सूची में आना था, लेकिन अक्टूबर 2005 तक मैं 31वें स्थान पर आ गई थी। लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर था कि एक दिन मैं चोटी की रैंकिंग हासिल कर लूंगी।
और आपके खेल में इतनी तेजी से इतना निखार आने की आप क्या वजह मानती हैं?
कह नहीं सकती, कई कारण हो सकते हैं, अभ्यास, शारीरिक फिटनेस और पक्का इरादा इत्यादि।
सानिया, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है?
ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतना और उसमें भी विंबलडन का सिंगल खिताब जीतना।
और खिलाड़ियों की बात करें तो क्या आप कभी मारिया शारापोवा की जगह लेने का सोचती हैं?
नहीं तो, मारिया दुनिया में पहले नंबर पर हैं और मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हाँ, हम दोनों काफी हार्ड शॉट लगाती हैं, इसलिए कुछ लोगों को समानता भी नजर आती है।
सानिया जी, खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के टेनिस प्रेमी आज सानिया मिर्जा के नाम से परिचित हैं। लेकिन कौन है सानिया मिर्जा और उनके इस लोकप्रिय टेनिस कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? इस तरह के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज सानिया मिर्जा स्वयं हमारे साथ हैं। सानिया जी, खेल और खिलाड़ी में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
सानिया जी, क्यों ना आपके बचपन से ही शुरुआत करें, जरा बताइए आपका बचपन कहाँ बीता और आपने टेनिस खेलना कब और कैसे शुरू किया?
मेरा जन्म तो 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था, लेकिन बचपन से ही हम हैदराबाद में रहे, जहाँ मेरे अब्बा जान इमरान मिर्जा जी ने 6 साल की उम्र से ही मुझे टेनिस सिखाना शुरू कर दिया था।
क्या पेशेवर खिलाड़ी के रूप में भी आपने छोटी उम्र से खेलना शुरू कर दिया था?
इतनी छोटी उम्र से तो नहीं, लेकिन 17 साल की उम्र तक मैं पेशे के तौर पर टेनिस खेलने लगी थी।
यानी 2003 से। क्या तब भी आपकी कोचिंग आपके अब्बा जान ही कर रहे थे?
नहीं, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। अम्मी मुझे एक दिन एक कोच के पास ले गई। पता है उन्होंने क्या कहा?
नहीं नहीं, जरा बताइए।
उन्होंने कहा, लड़की तो बहुत छोटी है, और मेरा कोच बनने से इनकार कर दिया।
सच में? اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے لگ بھگ ایک مہینے بعد اسی کوچ نے میرے امی ابا کو فون کیا اور کہا کہ اس نے اتنی چھوٹی عمر میں کسی کھلاڑی کو اتنا اچھا کھیلتے نہیں دیکھا۔
اور ثانیہ جی، آپ نے کوچ کے ہر شبد کو صحیح ثابت کر کے دکھا دیا۔ ثانیہ جی، کیا آپ کو آشا تھی کہ آپ اتنی تیزی سے اتنی اونچی رینکنگ پا لیں گی؟
بالکل نہیں۔ میرا لکش 2005 کے انت تک وشو کی پہلی 100 کھلاڑیوں کی سوچی میں آنا تھا، لیکن اکتوبر 2005 تک میں 31ویں استھان پر آ گئی تھی۔ لیکن مجھے اتنا وشواس ضرور تھا کہ ایک دن میں چوٹی کی رینکنگ حاصل کر لوں گی۔
اور آپ کے کھیل میں اتنی تیزی سے اتنا نکھار آنے کی آپ کیا وجہ مانتی ہیں؟
کہہ نہیں سکتی، کئی کارن ہو سکتے ہیں، ابھیاس، شاریرک فٹنس اور پکا ارادہ اتیادی۔
ثانیہ، آپ کا سب سے بڑا سپنا کیا ہے؟
گرینڈ سلیم پرتیوگتا جیتنا اور اس میں بھی ومبلڈن کا سنگل خطاب جیتنا۔
اور کھلاڑیوں کی بات کریں تو کیا آپ کبھی ماریا شاراپووا کی جگہ لینے کا سوچتی ہیں؟
نہیں تو، ماریا دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں اور مجھے ابھی بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے۔ ہاں، ہم دونوں کافی ہارڈ شاٹ لگاتی ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کو سمانتا بھی نظر آتی ہے۔
ثانیہ جی، کھیل اور کھلاڑی کارکرم میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ अभ्यास 3, प्रश्न 12 से 17। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन और संस्थापक बिल गेट्स दिसंबर 2005 में भारत की यात्रा पर आए। हिंदी की एक लोकप्रिय पत्रिका की संवाददाता ने उनसे उनकी परोपकारी संस्था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के काम और भारत से उनके लगाव के बारे में बातचीत की। उनकी इस बातचीत के अनुवाद को ध्यान से सुनिए और दिए गए प्रत्येक कथन को पढ़कर बताइए कि कथन सही है या गलत। अपना उत्तर उपयुक्त खाने में सही का निशान लगाकर दीजिए। यह बातचीत आपको 2 बार सुनाई जाएगी।
بل گیٹ صاحب، ہمارے پاٹھکوں کی اور سے بھارت میں آپ کا سواگت ہے۔
مہمان نوازی کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد۔
بل گیٹ صاحب، 1997 کے بعد سے آپ کئی بار بھارت آ چکے ہیں، ایسا کیا ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لاتا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ سواستھ کے معاملے میں دنیا میں جتنی سمسیائیں ہیں ان میں سے ادھکتر یہاں بھارت میں پائی جاتی ہیں۔ ملیریا، ٹی بی اور ایڈز جیسی ساری بڑی بیماریاں بڑی سنکھیا میں ہیں کیونکہ آبادی بہت بڑی ہے۔ دوسرے، ان بیماریوں سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے یہاں کی ماتائیں کیا کیا نہیں کرتی، یہ بات دل کو چھو جاتی ہے۔
آپ کی پروپکاری سنستھا بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے لیے بھارت میں سب سے بڑی چنوتی آپ کیا مانتے ہیں؟
چنوتیاں 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو سواستھ سیوا کے سادھن سیمت ہیں، اور دوسرے، بہار اور مدھیہ پردیش جیسے راجیوں میں دیہاتوں تک پہنچنا تھوڑا کٹھن ہے۔
تو کیا آپ کی سنستھا کو تامل ناڈو اور کرناٹک کی اپیکشا بہار اور مدھیہ پردیش جیسے راجیوں میں پروپکار کا کام نہیں کرنا چاہیے؟
نہیں، ہم کسی کھیتر یا راجیہ کو دھیان میں رکھ کر پروپکار کا کام نہیں کرتے۔ ہمارا لکش لوگوں کو پھیلنے والی بیماریوں سے بچانا ہے۔ امریکہ میں ایسی بیماریوں کی سمسیا نہیں ہے، ایشیا اور افریقہ کے دیشوں میں ہے، اسی لیے ہماری سنستھا بھارت میں کام کرتی ہے۔
ایچ آئی وی ایڈز کی بیماری फैलने से एक बार फिर इस बात का एहसास हुआ है कि वैज्ञानिक खोज में पैसा लगाना कितना जरूरी है। आपकी संस्था इस काम में कितनी मदद कर सकती है?
कोई संस्था केवल अपने बलबूते पर एड्स जैसी बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकती। हम एड्स के इलाज की खोज और रोगियों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने के लिए सरकारों की सहायता कर रहे हैं।
आप भारत के स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले थे, कैसा लगा आपको उनसे मिलकर?
मैं सोच रहा था, न जाने मंत्री जी को हमारी संस्था के काम की कितनी जानकारी होगी, लेकिन जिस तरह हमारे काम के हर पहलू में उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई, उससे मुझे खुशी हुई।
स्वास्थ्य मंत्री जी भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों और प्रबंध संस्थानों की तरह ही पूरे देश में भारतीय स्वास्थ्य संस्थान खोलना चाहते हैं, क्या आप इस काम में उनकी मदद करना चाहेंगे?
अभी तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम इस योजना का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने इस योजना के निदेशक से बातचीत का प्रस्ताव रखा है।
अंत में पहला सवाल ही एक बार फिर करना चाहूंगी, भारत में ऐसी क्या विशेषता या विशेषताएं हैं जो आपको आकर्षित करती हैं?
भारत एक तरफ तो बेहद पुराने इतिहास और संस्कृति वाला देश है, और दूसरी तरफ आईटी या सूचना तकनीक की बात करें तो भविष्य में जीने वाला देश भी है। इस मिश्रण की एक अनोखी सुंदरता है, क्योंकि आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहते।
बिल गेट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
बिल गेट साहब, हमारे पाठकों की ओर से भारत में आपका स्वागत है।
मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल गेट साहब, 1997 के बाद से आप कई बार भारत आ चुके हैं, ऐसा क्या है जो आपको यहाँ खींच लाता है?
पहली बात तो ये है कि स्वास्थ्य के मामले में दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उनमें से अधिकतर यहाँ भारत में पाई जाती हैं। मलेरिया, टीबी और एड्स जैसी सारी बड़ी बीमारियां बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। दूसरे, इन बीमारियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए यहाँ की माताएं क्या क्या नहीं करती, ये बात दिल को छू जाती है।
आपकी परोपकारी संस्था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए भारत में सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं?
चुनौतियां दो तरह की हैं, एक तो स्वास्थ्य सेवा के साधन सीमित हैं, और दूसरे, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में देहातों तक पहुंचना थोड़ा कठिन है।
तो क्या आपकी संस्था को तमिलनाडु और कर्नाटक की अपेक्षा बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में परोपकार का काम नहीं करना चाहिए?
नहीं, हम किसी क्षेत्र या राज्य को ध्यान में रखकर परोपकार का काम नहीं करते। हमारा लक्ष्य लोगों को फैलने वाली बीमारियों से बचाना है। अमेरिका में ऐसी बीमारियों की समस्या नहीं है, एशिया और अफ्रीका के देशों में है, इसीलिए हमारी संस्था भारत में काम करती है।
एचआईवी एड्स की बीमारी फैलने से एक बार फिर इस बात का एहसास हुआ है कि वैज्ञानिक खोज में पैसा लगाना कितना जरूरी है। आपकी संस्था इस काम में कितनी मदद कर सकती है?
कोई संस्था केवल अपने बलबूते पर एड्स जैसी बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकती। हम एड्स के इलाज की खोज और रोगियों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने के लिए सरकारों की सहायता कर रहे हैं।
आप भारत के स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले थे, कैसा लगा आपको उनसे मिलकर?
मैं सोच रहा था, न जाने मंत्री जी को हमारी संस्था के काम की कितनी जानकारी होगी, लेकिन जिस तरह हमारे काम के हर पहलू में उन्होंने अपनी दिलचस्पी दिखाई, उससे मुझे खुशी हुई।
स्वास्थ्य मंत्री जी भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थानों और प्रबंध संस्थानों की तरह ही पूरे देश में भारतीय स्वास्थ्य संस्थान खोलना चाहते हैं, क्या आप इस काम में उनकी मदद करना चाहेंगे?
अभी तो इतना ही कह सकता हूँ कि हम इस योजना का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने इस योजना के निदेशक से बातचीत का प्रस्ताव रखा है।
अंत में पहला सवाल ही एक बार फिर करना चाहूंगी, भारत में ऐसी क्या विशेषता या विशेषताएं हैं जो आपको आकर्षित करती हैं?
भारत एक तरफ तो बेहद पुराने इतिहास और संस्कृति वाला देश है, और दूसरी तरफ आईटी या सूचना तकनीक की बात करें तो भविष्य में जीने वाला देश भी है। इस मिश्रण की एक अनोखी सुंदरता है, क्योंकि आप दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहते।
बिल गेट्स साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभ्यास 4, प्रश्न 18 से 23। टमाटर के इतिहास और गुणों के बारे में प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी की एक विज्ञान वार्ता ध्यान से सुनिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वार्ता आपको दो बार सुनाई जाएगी।
नमस्कार, मैं हूं पंचानन माहेश्वरी। टमाटर के बिना किसी भी खाने की कल्पना करना थोड़ा कठिन है। सब्जी हो, चटनी हो, सलाद हो या फिर पिज्जा और बर्गर, टमाटर किसी न किसी रूप में हर तरह के खाने में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, टमाटर सब्जी नहीं बल्कि फल है। यही नहीं, पीले और नारंगी टमाटर लाल टमाटरों की अपेक्षा अधिक मीठे होते हैं। माना जाता है कि टमाटर का जन्म दक्षिणी अमरीका में हुआ। इंडीज पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी इन्हें सदियों से उगा रहे थे। यहां से टमाटर मेक्सिको के मैदानी भागों तक पहुंचे, और 16वीं सदी में जब स्पेन के लोग दक्षिणी अमरीका गए तो अपने साथ टमाटरों को यूरोप तक ले आए। माना जाता है कि यूरोप में पहली बार टमाटर की खेती 1550 के आसपास इटली में की गई। यहां से टमाटर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और एशिया तक पहुंच गए। फ्रांसीसी लोगों ने टमाटर को बहुत पसंद किया और इन्हें प्यार का सेब कहकर पुकारा। जर्मनी में टमाटर को स्वर्ग के सेब बताया गया। लेकिन अंग्रेजों का विश्वास था कि विषैले पौधों के परिवार से संबंधित होने की वजह से टमाटर अच्छी चीज नहीं है। आजकल टमाटर पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं। यही नहीं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में की गई खोज से पता चला है कि टमाटर छाती और गले के कैंसरों से हमारा बचाव करते हैं। केवल 100 ग्राम टमाटरों से हमें एक अंडे की तुलना में 5 गुना लोहा और लगभग 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टमाटर में अंगूर और संतरे से ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं, जो गर्म किए जाने पर भी नष्ट नहीं होते। इनमें पाया जाने वाला कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है और खून की कमी को भी दूर करता है। टमाटर पेट साफ रखने और वजन कम करने में भी मदद करता है। नमस्कार, मैं हूं पंचानन माहेश्वरी। टमाटर के बिना किसी भी खाने की कल्पना करना थोड़ा कठिन है। सब्जी हो, चटनी हो, सलाद हो या फिर पिज्जा और बर्गर, टमाटर किसी न किसी रूप में हर तरह के खाने में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, टमाटर सब्जी नहीं बल्कि फल है। यही नहीं, पीले और नारंगी टमाटर लाल टमाटरों की अपेक्षा अधिक मीठे होते हैं। माना जाता है कि टमाटर का जन्म दक्षिणी अमरीका में हुआ। इंडीज पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी इन्हें सदियों से उगा रहे थे। यहां से टमाटर मेक्सिको के मैदानी भागों तक पहुंचे और 16वीं सदी में जब स्पेन के लोग दक्षिणी अमरीका गए तो अपने साथ टमाटरों को यूरोप तक ले आए। माना जाता है कि यूरोप में पहली बार टमाटर की खेती 1550 के आसपास इटली में की गई। यहां से टमाटर फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और एशिया तक पहुंच गए। फ्रांसीसी लोगों ने टमाटर को बहुत पसंद किया और इन्हें प्यार का सेब कहकर पुकारा। जर्मनी में टमाटर को स्वर्ग के सेब बताया गया। लेकिन अंग्रेजों का विश्वास था कि विषैले पौधों के परिवार से संबंधित होने की वजह से टमाटर अच्छी चीज नहीं है। आजकल टमाटर पूरी दुनिया में उगाए जाते हैं। यही नहीं, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में की गई खोज से पता चला है कि टमाटर छाती और गले के कैंसरों से हमारा बचाव करते हैं। केवल 100 ग्राम टमाटरों से हमें एक अंडे की तुलना में 5 गुना लोहा और लगभग 1 ग्राम प्रोटीन मिलता है। टमाटर में अंगूर और संतरे से ज्यादा विटामिन पाए जाते हैं जो गर्म किए जाने पर भी नष्ट नहीं होते। इनमें पाया जाने वाला कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है और खून की कमी को भी दूर करता है। टमाटर पेट साफ रखने और वजन कम करने में भी मदद करता है।
This is the end of the test.